This is Akashvani. Now we bring you a special program on Israel-Iran conflict and evolving situation in West Asia. The participants are Skand Ranjan Tayal, former ambassador, Atul Aneja, strategic analyst, and Shubhra Ranjan, international affairs expert. Moderator is Vishal Dahiya, journalist.
Hello and welcome to this special program. Today we're going to talk about Israel-Iran conflict. Now, as all of us know, Israel and Iran are once again engaged in a very serious confrontation since past 48 hours. Both sides have been exchanging a barrage of missiles while Israel has attacked several key points deep within Iran, including its nuclear facilities. Iran has also responded with its own missile attack on the Israeli capital. For more or to understand various aspects of this conflict, both in terms of the West Asian region politics and also the larger impact on the world geopolitics and how India should look at this entire situation, we're today joined by our panel of experts, former ambassador Skand Ranjan Tayal, Mr. Atul Aneja, strategic analyst. We're also joined by Shubhra Ranjan, our expert on international affairs. Welcome, all of you. I'll begin with you, Aneja ji, and let's start by first understanding the intensity of the situation. How serious and how intense is the situation right now? It has been around 48 hours and the reports which are coming in from both sides are not good.
Vijay ji, extremely sensitive, and we are on an escalatory path right now, because what has happened is that the Iranians have been attacked by Israel first, and the attack has been on Iranian nuclear facilities, and not only Iranian nuclear facilities, but also the leadership of the military, which is represented by the army, and the IRGC, which is the Islamic Revolutionary Guard Corps, which is the elite force of the Iranian Republic. Along with that, there has been a very pinpointed attack on Iranian nuclear scientists. So the idea is to weaken Iran's nuclear capability. It began with a surgical strike on specific targets. But what has happened thereafter, perhaps Israel did not expect it that way, that the retaliatory strike by Iran has also been pretty impactful, though most of the missiles have been intercepted. But you know, the symbol of any country is its capital. So you have these Iranian missiles falling in Tel Aviv and Hazarelia, including central Israel, but more so is that it's in the capital. I think that's very, very serious, which leads to further escalation. Because will Israel now start its second round of attacks on Iran? And if so, will Iran strike back again? If it has the capacity, we don't know as of now. Mm-hmm. So we are on an escalatory cycle right now.
Okay.
The problem which arises really is that these are also very important strategic locations across the globe. Any attack on Iran means it impacts the world energy supplies. And I think it's already happened that the price of oil is bound to increase.
Well, it's gone up. The crude oil prices have gone up,
And that's going to impact countries like India. Mm-hmm. And if it spreads further to the Gulf countries, for example, then we are in very, very serious trouble. So extremely, to your original question, is it serious? I think exceptionally serious. And we are not in any way towards a de-escalatory cycle. It's still in the escalatory phase.
Okay, still in the escalatory phase. Ambassador Tayal, do you agree with this point which Mr. Aneja is making here, that it looks like there seems to be more which we might expect from both sides from here onwards? Rather, has this spiraled out of our hands in this round?
I think it will be useful for our listeners to recall history. That 1979 Iranian Revolution, and after that, an Islamic Republic was established. Now, the regime in Iran is led by Islamic clerics, and only the people approved by them can stand for elections and president, etc. Now, the declared objective of the Islamic Republic of Iran, of course, is one to have very Islamic laws and dress, etc. But one of the declared objectives is also to destroy Israel. They don't call it a nation, they call it a Zionist regime. And they have been perhaps pursuing a quest to acquire nuclear weapon capacity. Iran has been a member of the Non-Proliferation Treaty, but they have been playing a cat and mouse game with the International Atomic Energy Agency. And we all know JCPOA and all kinds of efforts were made by the Western countries to delay the enrichment process in Iran, etc. Now, Israel intelligence says, and even Western intelligence says, that Iran is just about a year away from acquiring enough enriched uranium to make nuclear weapons. And this is an existential threat for Israel. One must understand that Israel is far away from Iran. Israel has no animosity against Iran. And around Israel, Iran propped up with Lebanon and Hezbollah, Syria, Assad regime, Hamas, and they weakened Palestinian leader Yasser Arafat. This was all done by Iran. So our listeners must understand that for Israel, it is an existential question. And all this attack is to destroy the nuclear weapon-making capacity of Iran. And this operation is continuing. Prime Minister Netanyahu has clearly said that till that objective is achieved, this operation will continue. So of course, it can escalate. But Iran is a very weak power technologically. They are nowhere near Israel, and now American ships are there, and they are not attacking Iran, but defending Israel. When the ballistic missiles start from Iran to attack Israel, American anti-missile forces are intercepting, and just a few hours back, Iran has issued ultimatum, or kind of a warning, to U.S., UK and France not to defend Israel. But I don't think Iran is foolish enough to attack any US asset. Otherwise, it will be catastrophic for them.
Meanwhile, let's listen into Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu when he announced the launch of Operation Rising Lion. He said the operation will last as many days as required and explained that the operation is aimed at safeguarding Israel's very existence.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program.
आपने कुछ इतिहास का जिक्र किया है मिस्टर तायल, मैं शुभ्रा जी को यहाँ लाना चाहूंगा। शुभ्रा जी, अगर इतिहास में थोड़ा सा और झांक कर देखें तो जिस तरह से 1979 के बाद से जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और ईरान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से जो रिश्तों में खराबी आई इसराइल और ईरान के बीच, तब से लेके अब तक के सफर में देखें तो पिछला हाल फिलहाल का जो कुछ दो ही साल मान लिए जाए, उस दौरान कई बड़ी घटनाएं हुई हैं पश्चिम एशिया में, खासतौर पर जिसे ईरान का एक्सिस कहा जाता था इसराइल के चारों तरफ, जिन ऑर्गेनाइजेशन की बात अभी मिस्टर तायल कर रहे थे, उनको लगभग लाचार कर दिया है इसराइल ने पिछले कुछ समय में। उस एंगल से देखें तो क्या इसे एक प्लान्ड स्ट्रेटेजिकल अटैक माना जा सकता है इसराइल की तरफ से, कि अब हमारे पास मौका है ईरान को सबक सिखाने का, क्योंकि ईरान के जो बाकी सहयोगी जो गुट थे इसराइल के आसपास के देशों में, उनमें अब वो ताकत नहीं रही।
हाँ, डेफिनेटली इसको इसी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जैसे अभी बताया जा रहा था कि ईरान क्रिएट्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इसराइल बिकॉज ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ इट्स ओन इस्लामिक regime. And therefore, Iran has been consistently trying to build the axis of resistance. And since Iran is a nuclear power, and whenever there is a nuclear states, and Israel not a declared nuclear power, but of course a de facto nuclear state, to usme terrorist actors ka hi main role hota hai. And as these axis of resistance, Hamas, Hezbollah, and Houthis, they have been comparatively, Houthis utna bhi nahi, has has been decimated. So, ek tarike ka, this is the best time that Israel can take such type of steps. We also understand, agar hum compare kare India-Pakistan war and Israel or Iran, jahan par nuclear actors hain aur non-state actors hain, to this is like show of power, creating an environment where the like US and Israel can get Iran on the table at this point of time according to what is their terms and conditions. So definitely this is the time jab Iran in a way comparatively kafi weak hai, par ye ek game hai aur jaise mujhe nahi lagta ki bahut zyada iska escalation us level tak hoga, kyunki India Pakistan ka bhi scenario lagbhag bahut hi risky scenario tha aur bar bar aise proof hota hai ki jo nuclear wala jo angle jab aata hai to states behave in a more sensible manner.
Ji bilkul,
war games hai which is going on since long time, but yes, obviously escalation, things go out of control also, but I don't think it will go so much out of control.
Iran's supreme leader Ayatollah Khomeini addressed his countrymen and said that Israel committed a big mistake.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Arze salam daram.
मैं अपने देश के प्रिय और आदरणीय जनों को वंदन करता हूं। देश के प्रिय सैन्य कमांडरों और विद्वानों की शहादत जो निसंदेह हम सभी के लिए एक गहरी क्षति है, और उन निर्दोष नागरिकों की मृत्यु के लिए मैं ईरान की जनता और शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह उनकी शहादत को स्वीकार करे और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनकी पवित्र आत्माओं को अपनी विशिष्ट अनुकंपा प्रदान करे। मैं अपने प्रिय राष्ट्र से ये कहना चाहता हूँ कि ज़ायोनिस्ट शासन ने एक अत्यंत गंभीर भूल की है और घोर लापरवाही का परिचय दिया है। इस दुस्साहसिक कृत्य के परिणाम स्वरूप ये शासन अल्लाह के करम से शीघ्र ही अपने विनाश की ओर अग्रसर होगा। ईरान न तो अपने अमूल्य शहीदों के लहू को व्यर्थ जाने देगा और न ही अपने वायु क्षेत्र के उल्लंघन को नजरअंदाज करेगा। हमारी सशस्त्र सेनाएं हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं और देश के सभी अधिकारी तथा जनता पूरी तरह से सेना के साथ खड़ी है। आज देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों और अनेक संगठनों ने भी इसी भाव से एक स्वर में संदेश जारी किया है।
एक और नजरिए से कुछ एक्सपर्ट्स इसको देख रहे हैं अनेजा जी, और इस पर मैं आपका विचार जानना चाहूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पश्चिम एशिया जिसकी हम बात करते हैं, एक लड़ाई इससे पहले भी लड़ी गई थी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर, जब इराक के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हमला किया था, और अभी जब ईरान के खिलाफ इसराइल का हमला हो रहा है तो वहां भी लगभग एक ही जैसी बात कही जा रही है कि भाई ईरान के पास जो परमाणु हथियार है वो बनाने की क्षमता लगभग आ चुकी है, और जैसा कि एम्बेसडर तायल भी कह रहे थे कि ईरान हैज बीन प्लेइंग अ कैट एंड माउस गेम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ विद द इंटरनेशनल एजेंसी इंस्पेक्टर्स एंड द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एज वेल। तो क्या कुछ समानताएं यहां दिखती हैं, और दूसरा अब की बार अमेरिका फ्रंट में नहीं है?
इस पे अपनी बात कहने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे इस टाइम दो अलाइज हैं। इसराइल एक हमारा अलाई है, लेकिन अगर हम सेंट्रल एशिया या चाबहार उस तरफ देखें या हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं, हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंस है, ईरान भी हमारा अलाई।
जी बिल्कुल, उतना ही मधुर रिश्ते।
मैं बिल्कुल न्यूट्रलिटी से ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहां पोस्टेड था, मैंने 12 साल मिडिल ईस्ट में बिताए एज ए रिपोर्टर। जब 79 रेवोल्यूशन होती है, उसके एक साल बाद 1980 सद्दाम हुसैन को खड़ा किया जाता है बाय द वेस्ट टू कैरी आउट रेजिम चेंज ऑफ ईरान। 7 साल तक वो लड़ाई हुई है ईरान इराक वॉर की। मैंने वहां पर खुद ईरान तेहरान में जाके सिमेट्रीज देखी हैं, किस तरह की तबाही हुई है, इट इज अनइमेजिनेबल। लेकिन रेजिम चेंज तब नहीं हुआ, ईरान बरकरार था। जब 2003 में सद्दाम हुसैन को टॉपल किया गया अमेरिकन्स ने, उसके बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो खबरें हैं उनकी अपनी रिपोर्ट है, क्योंकि मैं उस टाइम रिपोर्ट कर रहा था, वो खुद इस कंक्लूजन में पहुंची थी कि 2003 के बाद जब सद्दाम हुसैन थ्रेट नहीं रहा ईरान के लिए, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का वेपनाइजेशन फेज बंद हो गया। और जहां तक बात आई JCPO की, उसके पहले इंटेंस इंस्पेक्शन हुई हर जगह, नेटेंस में, बुशहर में, फरदो जो इनकी फैसिलिटी है, कैमरा कैमराज लगाए गए, उसके बाद जाके वो एक JCPOA आया जिसमें ताकि ईरान सिर्फ 3% तक ही एनरिचमेंट कर सकता है. Who broke JCPOA? It is when 2016 में जब ट्रंप कम्स इनटू द पिक्चर. सो यू सी यू हैव अ राइवल नैरेटिव एज वेल विच इज कमिंग अप फ्रॉम अ ईरानियन पर्सपेक्टिव. सो वी आर इन दिस फेज राइट नाउ. आई थिंक नाउ अगेन देर इज अ अटेम्प्ट एट रेजिम चेंज इन ईरान एंड दिस टाइम इसराइल इज द कंट्री विच इज वॉन्टिंग टू डू दैट. And this is something which is going on right now. We don't know how far it will go. So I think you have to see today's event not in isolation of what happens in the Gaza war, but in a much bigger, wider context, which starts actually with 1980.
Much larger canvas and the number of players as well. It's just not Israel and Iran. There are other players as well. Therein I bring in Mr. Tayal here again. Mr. Tayal, when we talk about other actors, which you were referring to earlier also, United States, UK, France, how do you assess the kind of stance which has been taken by specifically United States of America, and the kind of statements which are coming in from China as well? Very interesting. They're saying that Israel has crossed the red line by attacking the nuclear facilities in Iran. So how should we look into these statements and contextualize them with what is happening on the ground?
मैं समझता हूँ कि शायद ही दुनिया का कोई देश है जो चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाए. अभी जो 35 मेंबर का बोर्ड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, उन्होंने जो रेजोल्यूशन दो दिन पहले पास किया ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड इज डेंजरसली क्लोज टू एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, समर्थन में वोट दिया चीन, रशिया और बुर्किना फासो. इस्लामिक देशों ने भी एब्सटेन किया, सऊदी अरेबिया, टर्की, इन्होंने अपोज नहीं किया ये रेजोल्यूशन. ये सब सुन्नी मुल्क है, ये डायमेंशन भी है, वहां सुन्नी शिया की डायमेंशन भी है. पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ईरान अगर अपना न्यूक्लियर वेपन्स की परस्यूट को छोड़ दे तो शायद अभी भी, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत प्रयत्न किया
जी बिल्कुल,
और उन्होंने कहा कि एनरिचमेंट आप खत्म कर दीजिए,
60 दिन की लिमिट दी गई थी ईरान को.
एक्चुअली पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि थोड़ा एनरिचमेंट हम 3% तक या 6% तक अलाउ कर देंगे, जिससे कि वो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक होता है उतना. पर इसराइल ने फिर दबाव प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर डाला और उसने कहा कि नहीं, एनरिचमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा ईरान को. इस पर ईरान भिदक गया और वो सब नेगोशिएशन खत्म हो गए और उसका फायदा उठाकर इसराइल ने ये हमला कर दिया.
जी बिल्कुल. एमएसताल, मैं शुभ्रा जी को लाना चाहूंगा. शुभ्रा जी, जब ये बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ हम देखते हैं, जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स, जैसे कि मिस्टर तायल अभी कह रहे थे कि अमेरिका का क्या हित है, अमेरिका का जो रुख है वो क्यों है इस पूरी लड़ाई में, वो जो रुख अमेरिका ने अपनाया हुआ है, यानी कि वो हमले में शामिल नहीं है लेकिन वो इसराइल की मदद करने में शामिल है जो ईरान के हमले हैं उनसे निपटने के लिए, दूसरा चीन की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, और इस पूरे पश्चिम एशिया के जो क्षेत्र है उसमें एक और बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है जिसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, हालांकि वो आजकल कहीं और बिजी है, यानी कि रशिया, रूस की हम बात कर रहे हैं, जो खुद एक यूक्रेन के साथ लड़ाई में बिजी. तो इन सब ताकतों पर नजर डालें और उनके इंटरेस्ट पर नजर डालें, तो आने वाले समय में एक दिन, दो दिन, चार दिन में, पांच दिन में, आपको क्या लगता है कि क्या इनकी तरफ से किसी तरह के प्रयास किए जा सकते हैं कि इसराइल और ईरान के बीच जो ये युद्ध छिड़ा है ये जल्द से जल्द रुक सके?
देखिए, चूंकि यूएस जो है वो बर्डन शेयरिंग करता है आज के टाइम में, क्योंकि यूएस उस तरीके के सिनारियों में नहीं है, तो यूएस की पॉलिसी हमेशा से ये रही है ऑफशोर बैलेंसिंग की, तो वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. और ये जो पर्टिकुलर वॉर है, इसका रिलेशन जो है वो यूक्रेन रशियन वॉर से भी हम जोड़ करके देख सकते हैं. ये पूरा जो थिएटर है फ्रॉम वेस्ट एशिया टिल जो आपका यूक्रेन रशिया वाला थिएटर है, और इधर जो एशिया पैसिफिक में ताइवान वाला थिएटर है, तो यूएस जो है वो फोकस कर रहा है कि शिफ्टिंग होती रहे और ये जो एक स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स चलता रहे. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एकदम अगर हम कहें कि अगले 7 डेज में या 10 डेज में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, ऐसा लग नहीं रहा है. लेकिन डेफिनेटली इस समय बाकी जो ताकतें हैं वो इस स्थिति में भी नहीं है. जैसे रशिया को यूक्रेन ने इंगेज करके रखा हुआ है, चाइना भी हमेशा कंपैरेटिवली ज्यादा वोकल रोल प्ले करता है बिकॉज चाइना के भी इतने डाइवर्स इंटरेस्ट्स है. तो फिलहाल कोई एक ऐसा देश अगर आता है तो शायद यूरोपियन यूनियन, तो अभी वर्तमान में हम नहीं देख सकते. और शायद फिर से मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ी दिन के लिए तो ये चलेगा, एंड एज थिंग्स इवॉल्व इन अदर थिएटर्स ऑल्सो, यूक्रेन वाले वॉर में भी चीजें कैसे इवॉल्व होंगी, तो शायद उसको देखते हुए इस पे कुछ असर पड़े. एंड अगर कोई रीजनल प्लेयर विल इमर्ज, तो इट सीम्स कि जो कतर है या यूएई है या जो वहां के ही कंट्रीज हैं, दे विल हैव टू टेक सम इनिशिएटिव एट प्रेजेंट, बिकॉज रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड थिएटर्स आर एंगेज्ड. दिस इज व्हाट आई बिलीव. तो थोड़े टाइम के लिए दिस थिंग विल कंटिन्यू.
ओके अतुल जी, वेरी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स of the region itself and of the international powers also which have a stake there. As both Ambassador Tayal and Shubhraji is referring to, you were also earlier pointing out, you've been stationed there, you know, you saw it all happening. Shia versus Sunnis, then most of these countries which are dependent upon their oil production for their economies to grow, they have their own specific interests. Some of them are, let's not forget the Abraham Accords as well. Some of the Arab nations already have an agreement with Israel there. Then look at the international powers, United States of America, China, Russia as well. They have their own interests in the region. How do you assess this entire situation? Is there a way out, because you can't have two nations going at each other for a very long period, although it is already happening in one part of the world, Russia and Ukraine.
Let's start focusing country by country. Let's look at the US. What is US main agenda? Make America great again. It needs trillions of dollars of investments from abroad. Who are the countries which are providing that? Among many, one would of course be China, but there's a China-US problem. So we rule out, we don't bring China into the equation, in the China-US equation. Then there are the Gulf countries. The one of countries which have the enormous financial power would be Saudi Arabia, would be Qatar, would be UAE. When it comes to this conflict, all the three countries have said, A, they will not allow US to use their airspace for any attacks on Iran. Number two, there is a possibility, given the ground pressure on each of these countries, despite having most of them having signed the Abraham Accords, that they have a leverage over the United States. That was, if you continue to attack, violate our airspace, for example, or continue these attacks on Iran, then we might restrict our financial flows, which will hit your prime objective of make America great again. So there is a leverage which the Gulf countries have on the Americans, and Americans will be mindful of it in the way they will respond to Israel. I would say that America at some point would be under pressure to restrain Israel. That's one. Let's look at the other two players which you mentioned. China and Russia. Very, very important players. For them, Iran is exceptionally important, given their geography. You see, during the course of the Arab Spring, they had decided to support Syria, Bashar al-Assad. And Syria was their first defense line, which has now been sort of, it's been removed because Bashar is out and the Islamists have come out. Second and most important defense line for Eurasia's preservation, which is their core territory, is Iran. Because if there is regime change in Iran, then your Eurasia gets exposed. Because in the calculation of the Russians and the Chinese, this whole game of regime change, which starts in Eastern Europe in 1994, ends up with regime change in Russia, which they tried through the Ukraine war, and China. So I would say that the Chinese and the Russians have a stake in the preservation of the regime in Iran. And therefore, they are likely to play. Now comes the point, can they? That is the important point which Shubhraji was also raising. That because Russia is locked up in the Ukrainian conflict, unless it liberates itself from Ukraine conflict, it doesn't have that kind of surplus capacity to support Iran, though it may have the intention to do so. For example, Iran like this time may need S-400 or S-500 missiles. Russia can't spare it that time. So these are kind of vulnerabilities which Israelis are exploiting. But as you said, it is not that they have a free pass to do anything. The Americans will at some point come. The Chinese usually are quite restrained. But if you see the Chinese envoy to the United Nations, he has come out and said that Israel has crossed all red lines, the point you made in the beginning of the program, by attacking Iran's nuclear facilities. So it's a complex dynamic. Israel does not have a free pass.
Okay. Let's look at it from Indian perspective and Indian angle as well. Ambassador Tayal, when we are talking about India's perspective on this entire situation, our stand is pretty much clear. Statement coming in from the government pretty clearly says that we are asking both sides to exercise restraint and hoping that peace will be restored soon. So how does India respond to this entire situation now?
पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अनेजा जी से सहमत हूं कि चीन और रशिया ईरान में रेजिम चेंज बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो अमेरिका से उसका एंटागोनिज्म बना रहे वो चाहेंगे. पर सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर में भी, पर ये रिजीम चेंज से बिल्कुल नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक जो भी इनकी नीतियां हैं, ये शाह और किंगडम्स के खिलाफ हैं. वो चाहती हैं कि ये किंगडम्स, सऊदी अरेबिया हो या यूएई, कतर वगैरह, ये अपना एजेंडा एक फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम के रास्ते से हट गए हैं और बिल्कुल अमेरिका. भारत के लिए ये एक बहुत ही जटिल समस्या है. और अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाए रियल सेंस में, तो इसराइल ही हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. अभी हमने जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरह से असला हमारे पास आ रहा है, रॉकेट्स आ रहे हैं, मिसाइल सिस्टम आ रहे हैं, डिफेंस आ रहा है, उसमें इसराइल के साथ हमारा एक बहुत ही गहरा संबंध है जो ईरान के साथ नहीं है। एक हमारी मित्रता ईरान से है, पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और ये सब चीजें वो बहुत भविष्य की बात है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसराइल से हमारे बहुत गहरे, मैं नहीं कह सकता कि वो उस तरह के संबंध है, पर जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि देखिए डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही ये समस्या हल हो सकती है, क्योंकि ना इसराइल ईरान को समाप्त कर सकता है ना ईरान इसराइल को समाप्त कर सकता है, पर कहीं ना कहीं फैसला इस तरह होगा कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की वो काफी डिग्रेड कर दी जाए, और मैं समझता हूँ उसमें भारत को भी कोई विशेष उसमें परेशानी नहीं होगी
जी।
पर लड़ाई आगे ना बढ़े, एस्केलेशन ना हो, और किसी भी तरह से गल्फ एरिया से जो तेल की सप्लाई है, जो गैस की सप्लाई है विश्व के लिए, भारत के लिए, चीन के लिए, उस पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। मैं समझता हूँ हमारे लिए कोर ऑब्जेक्टिव हमारे देश के लिए ये है कि जो सी भी, अब देखिए थोड़ी बहुत लड़ाई तो ये चलती है जैसे यूक्रेन और रशिया की चल रही है, पर तेल के जो फ्लो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे कोई असर ना पड़े, और तेल जो गल्फ कंट्रीज से सऊदी अरेबिया और यूएई कतर से गैस आता है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैं समझता हूँ भारत की विदेश नीति के लिए ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है
जी। बिल्कुल शिवराज जी, क्विक कमेंट फ्रॉम यू एज वेल, डू यू एग्री विद दिस पार्ट दैट व्हाटएवर इंडिया इज एस्पाउसिंग इन दिस सिचुएशन इज अल्टीमेटली द वे आउट, दैट इज डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, बोथ साइड्स विल हैव टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, दे माइट जस्टिफाई देयर एक्शंस फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, बट फॉर द लार्जर गुड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स द एंटायर ऑयल ट्रेड एज वेल, इट इज वाइजर स्टेप टू गो अहेड एंड चूज द पाथ ऑफ पीस।
अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, बिकॉज नेशंस अंडरस्टैंड इट इज अ वाइजर पाथ, बट दे आर नेवर एबल टू डू दैट, बिकॉज जो भी हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो तो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, और अगर ऐसा होता तो शायद ये वॉर स्टार्ट ही नहीं होती या ये अटेम्प्ट स्टार्ट नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को बहुत मुश्किल होगी कि हम अपने इंटरेस्ट को वहां पे सिक्योर कर पाए, और हमारे लिए जो ऑप्शन है वो डाइवर्सिफिकेशन ही बेसिकली ऑप्शन है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज और इन चीजों को डाइवर्सिफाई करें। ये जो वॉर हुई है वो डायलॉग करके चीजों को रिजोल्व करने के लिए हुई ही नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पास्ट में यूरोपियन यूनियन ने एफर्ट किया, ईरान ने भी जेसीपीओ में गए, लेकिन उसके बाद फिर यूएस ने विड्रॉ किया। ये वॉर मुझे ऐसे लगता है एक अटेम्प्ट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, जो वो देख रहे हैं टू रीस्टैब्लिश देयर हेजेमनी। और हमेशा यूएस को तब फायदा होता है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बाकी जगह किसी न किसी तरीके की इंस्टेबिलिटी हो, किसी न किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि हम ये भी देखना होगा कि अल्टीमेटली व्हाई नाउ, सडनली व्हाई नाउ एंड हु इज द माइंड बिहाइंड दैट। तो यूएस को हमेशा फायदा हुआ है जब भी बाकी जगह पर, एंड इट इज अ गेम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इंडिया विल हैव टू प्ले वेरी सेफ गेम, एंड हमारा जो एक ग्रैंड आइडिया है मल्टीपल अलाइनमेंट्स एंड इशू बेस्ड अप्रोच, बिकॉज आई थिंक नॉट मच स्कोप फॉर वॉट वी कैन डू अदर देन डाइवर्सिफिकेशन।
ओके अनिजा जी, अ फाइनल वर्ड फ्रॉम यू ऑन द शो विज़ इंडिया स्टैंड। वी हैव टू, एज बोथ ऑफ द पैनलिस्ट आर पॉइंटिंग आउट, दैट इंडिया विल हैव टू कंटिन्यू विद इट्स बैलेंस्ड अप्रोच, एंड अल्टीमेटली सेन वॉइसेस विल हैव टू हियर टू व्हाट इंडिया स्टैंड इज, दैट इज डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
लेट अस लुक एट द इक्वेशन हियर। इंडियाज कोर इंटरेस्ट, one with Israel, weapons, that relationship is vital, so we have to keep up or preserve our strategic relationship with Israel. Iran means energy and oil supplies and energy security, equally important. What are the options for India? I think we need to proactively come in and intervene to diffuse this crisis, because we need both these elements. We need Israel and Israel's special relationship, especially vis-a-vis weapons, and we need that the prices of oil remain in check. So instead of just being a passive player and making a diplomatic noise that this should end diplomatically, I think it's time for a proactive diplomacy, because we have equation with both the countries to come in proactively and see that this crisis is resolved, diffused at the earliest, because that is where our national interests lie.
Thank you so much, Shubhra ji, Mr. Tayal and Atul Aneja ji, for joining us for a deep-down analysis on the ongoing Israel-Iran conflict.
You were listening to a special program on Israel-Iran conflict and evolving situation in West Asia. The participants were Skandranjan Tayal, former ambassador, Atul Aneja, strategic analyst, and Shubhra Ranjan, international affairs expert. Moderator was Vishal Dahiya, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 92890-94044.